हेलो गाइस,
व्हाट इज अप।
मेरा नाम है रोहित
और मैं हूं आयुष।
WWE हो या फिर ऑल इलीट रेसलिंग,
ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट,
रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला,
क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा।
वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज ये जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा फ्रेश होने वाला है, क्योंकि आपको पता है WWE का जो सबसे बड़ा इवेंट है रेसलमेनिया वो ओवर हो चुका है और यहाँ से शुरुआत होती है नई कहानियों की, नई स्टोरी लाइन की। बट मैं यहाँ पे किसी एक सुपरस्टार की स्टोरी की बात नहीं कर रहा है, पूरी WWE की स्टोरी ही चेंज होने वाली है, हो चुकी है, या मुझे बोलना चाहिए, या किसी भी तरीके से ले सकते हो, WWE में नए एरा की शुरुआत है। तो भाई इस एपिसोड में बिल्कुल मतलब मस्त, आप आराम से बैठ जाओ। अब देखो आपके लिए आने वाले कुछ मिनटों में कैसा एंटरटेनमेंट होने वाला है। पूरे WWE के न्यू एरा ही क्या चल रहा है भाई, पॉल लेवा कह रहा है क्या, रहना सेंस आ रहा है, कोडी रोड्स चैंपियन बन गए, अब क्या इसमें डिफरेंट है, रॉक और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन एंड ऑल्सो रोमन रेंस अब चैंपियनशिप हार गए, तो भाई अब ये रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ है, क्या उसका फ्यूचर है, क्या उसकी स्टोरी है, सब कुछ डिस्कशन होगी यहाँ पे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई Spotify पे सुन रहे हो तो फॉलो और रेट जरूर कर लेना, ताकि जो अगला एपिसोड है उसके आपके सारे नोटिफिकेशन मिले। एंड यस, कुछ नेक्स्ट चीज़ें और भी असली अखाड़ा पर होने वाली हैं, एंड हम भी कह सकते हैं अपने नए एरा की शुरुआत कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। वेलकम है आयुष आपका भी असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में, और शुरुआत ही पहले कर लेते हैं इस नई एरा वाली चीज़ से। ये सिर्फ बोलने के लिए तो नहीं है ऑब्वियसली, इस बार हम बोल सकते हैं, इससे पहले बोलता था नए एरा ये हो गया, बट इस बार डिफरेंस और चीज़ें जो चेंजेस हो रहे हैं वो अभी से, जब शुरुआत भी नहीं हुई एरा की या हो चुकी है तो वो अभी से फील हो रहे हैं
भाई। देखो सबसे पहले बात तो मैं बोलूँगा कि जो मज़ेदार चीज़ है वो ये कि WWE फाइनली इस चीज़ को दिखा भी रही है टीवी पे, और वो बता भी रहे हैं कि हम कुछ चेंज करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सीज़न प्रीमियर ऑफ मंडे नाइट रॉ और कुछ नहीं बदला, सीज़न प्रीमियर ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन सब कुछ सेम। इस बार प्रोडक्शन, फैंस, टीवी कैमरा एंगल्स, ट्रांजिशंस, छोटी छोटी भी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो जब हम बात करते हैं कि एक नई एरा आ रही है रोहित, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई नया चैम्पियन आ गया, कोई नई स्टोरी लाइन स्टार्ट हो गई, कोई रिटर्न हो गया, नहीं, हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट जो हम कहते हैं WWE का चेंज होने वाला। और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक रोहित ये हमने कभी अपने लाइफ टाइम में विटनेस किया है। लास्ट एटीट्यूड एरा को मेंशन करा जाता है अभी भी, इस एरा को पॉल लेवेक एरा बोलेंगे क्या बोलेंगे आई डोंट नो, लेकिन इस बारे में क्या कहना है कि एटीट्यूड एरा हम इतनी बातें करते हैं, पीछे जाके देखते हैं, मज़े लेते हैं उस सब चीज़ के, लेकिन हमारे खुद के टाइम में एक WWE की नई एरा स्टार्ट होने वाली है, अगर सोचें तो कितनी बड़ी बात है।
आयुष ने यहाँ पे जो बात बोली ना कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कोई स्टोरी लाइन चेंज हो रही है, नया चैंपियन बन गया, ये इसकी वजह से नई एरा आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक रोल ज़रूर आप कह सकते हो है इसमें कि भाई नया चैंपियन बना है, रोमन रेंज जितने टाइम से चैंपियन था वो नहीं है और कोडी रोड चैंपियन है, तो कुछ तरीके से इसे भी देखा जा सकता है कि नई शुरुआत है। लेकिन जैसा आयुष बता रहा है कि ट्रांजिशन, कैमरा एंगल, जो चीज़ें WWE प्रोडक्शन में भी चेंज कर रही है, और सबसे बड़ा चेंज जो एक क्लियर है यहाँ पे वो है कि अब सारी चीज़ें HHH के हाथ में हैं और विंस मैकमैन का कंट्रोल नहीं है, तो ये अपने आप में ही एक नई एरा अपने आप से, इसीलिए स्टेफनी ने आके इसको पॉल लेवेक एरा बोला था। और कोडी रोड्स जो अपनी स्टोरी लाइन अब आगे चलाएंगे, कितने टाइम तक चैंपियन रहते हैं, वो इस एरा को लीड करने वाले हैं, खुद HHH ने बोला है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस है। और हम मुझे कहना चाहिए जैसे अभी HHH ने खुद बोला कि ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया है, और अब मैं इतना तो कह सकता हूँ भाई, मैंने जितनी भी रेसलमेनिया खुद देखी हैं लाइव, जब से मतलब होश संभाला है, जब से WWE फॉलो करी है, मेरे को तो सही में बेस्ट असर मिलने लगी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ उठाने के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उठाने के लिए, और WWE का प्रॉफिट हो, खैर वो तो उनकी अपनी बात है, लेकिन मैं ये देख के बड़ा खुश।
और मैं यहाँ पे ये चीज़ भी हमें बात करनी चाहिए रोहित यहाँ पे, कि कैसे ये एक एरा जो है, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं विजुअली, हम टीवी पे एज एन ऑडियंस शो देख रहे हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं भाई कि मर्चेंडाइज नहीं मिलती इंडिया में, हम बात करते हैं कभी कोई PLE क्यों नहीं हुआ इंडिया में, अगर ये सारी हिस्टोरिकल चीज़ें होनी हैं तो आई थिंक वो इस एरा में ही होंगी, और अगर वो चीज़ होगी वो हम फैंस की वजह से होगी, बिकॉज WWE को वो चीज़ दिखेगी कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। 10 साल पहले ग्लास्को में, फ्रांस में, बर्लिन में, सऊदी अरेबिया में, इन जगहों पे इवेंट्स नहीं होते थे भाई, तो अगर इंडिया में भी नहीं हो रहे हैं अभी तो कभी ना कभी तो होंगे। तो अगर इस नई एरा को हम देखें तो सिर्फ हम इनसाइड द TV या फिर जो स्टोरी लाइन्स हैं, जैसा कि हमने बात की अभी तक, ये हर चीज़ है ऊपर से लेके नीचे तक, स्पॉन्सरशिप, मनी, एवरीथिंग कैन चेंज। और अगर सोचो भाई ऐसा एक पेपर भी हो कि हर साल इंडिया में भी WWE आएगी, हर साल एक PLE भी करेगी, तो फिर क्या हम बोलेंगे WWE के बारे में कि हम इस एरा के पार्ट हैं।
ये इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जो WWE ने मॉडर्न चीज़ें हैं ना उसको अडेप्ट करना शुरू कर लिया है। जैसे कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव भी जा रही हैं, जैसे एक नेगेटिव तो नहीं यार, वैसे प्राइम का जो आयुष वैसे बीच में छपा हुआ भी था रेसलमेनिया में, वो इतना बेकार नहीं लग रहा था जितना स्मैकडाउन में उसको बिल्कुल कलर वलर करके उन्होंने दिखा दिया था। तो मॉडर्न चीज़ें जो हर तरीके से वर्क करती हैं WWE उसको अडेप्ट कर रही है, और विंस मैकमैन क्योंकि थोड़े ओल्ड स्कूल टाइप के थे तो वो चीज़ें वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते थे। निक खान ने आके जिस तरीके से चेंजेस किए हैं, WWE ने प्रोडक्शन में जो लीड है उसको चेंज किया है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि ओवरऑल जो करंट एरा में, या फिर जो करंट एरा इन द सेंस मॉडर्न टाइम मॉडर्न वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उसको WWE अडेप्ट कर रही है, और इसीलिए WWE स्पॉन्सरशिप वगैरह सब कुछ ले रही है और बिजनेस ड्रिवन डिसीजन हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस फैंस को ध्यान में रखा जा रहा, तो इसलिए जो आयुष ने बात बोली कि इंडिया में इवेंट तो शायद उस तरफ भी बढ़ सकती है WWE अगर उनको लगता है कि यहाँ पे बिजनेस है, फिर मौका बनाने मतलब बिजनेस बनाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कुल मिला के मैं तो
भाई अगर बिजनेस बन रहा है तो फैंस के पैसों से ही बन रहा है, और फैंस को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी बदले में दिया जा रहा है, और ऑब्वियसली WWE उनसे पैसे चार्ज कर रही है। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक कर रहा था कि अगर आपको भाई रेसलमेनिया वर्ल्ड में अंडरटेकर के साथ ऑटोग्राफ साइनिंग चाहिए, $300 उसकी सिर्फ टिकट है, तो भले ही आप 5 लाख रुपए खर्च के इंडिया से रेसलमेनिया चले जाओ, अंडरटेकर के ऑटोग्राफ के लिए आपको 18,000-20,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। ये WWE का बिजनेस गेम है। लेकिन जब एक बंदा वहाँ पे जाता है तो हमने देखा कि WWE वर्ल्ड में कितने हज़ारों लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, और 4-5 दिन तक उन्होंने उस एक्सपीरियंस को वहाँ पे रखा। तो जब आप रेसलिंग फैन की तरह एक ऐसे वीकेंड में जाते हैं जहाँ आपको पूरी WWE का एक्सपीरियंस करना है ऊपर से नीचे तक, और आपके पास वो बजट है जो कि WWE को ऑब्वियसली मिलियन लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 15-20 हज़ार लोग चाहिए, और वो उनको इजीली मिल जाते हैं बिकॉज भाई पैसों वाले लोग बतेरे हैं, तो WWE फैंस को भी नई चीज़ें करने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, और उसके बदले में WWE का बिजनेस भी बढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज अगर वो चीज़ होगी पैसा बनेगा तभी तो आगे इस नई एरा में नई चीज़ें होंगी। बिकॉज कौन सा ऐसा बिजनेस है दुनिया का जो प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा या फिर पैसों के पीछे नहीं भाग रहा। तो उस चीज़ को आई डोंट थिंक, जैसे प्राइम के लोगों की बात करी, रोहित कितने बंदे बोलेंगे आके कि जब अंडरटेकर ने रॉक को चोक स्लैम किया तो उनकी नज़र प्राइम के लोगों पे थी। मैं तो भूल गया था भाई कि कहीं प्राइम का लोगो भी अरीना में या रिंग में है।
आई थिंक उसकी प्लेसमेंट जैसे मैंने बोला बहुत अच्छी तरीके से की थी, तो कुछ भी ऐसा अलग फील नहीं हुआ। और ये जो हम एरा की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ थोड़ी है कि हम उठा के बोल देंगे यार नई एरा शुरू हुई तो ये चेंज हुआ। ये एरा ऐसा चेंज है कि ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं। कभी जब एटीट्यूड एरा से ट्रांजिशन हुआ रूथलेस अग्रेशन में, तो बस वो जॉन सीना ने जो बोला था उससे बोलते हैं कि हाँ वो एक पॉइंट था, फिर स्टोन कोल्ड का वो 316 वाली चीज़ वो एक पॉइंट था एटीट्यूड एरा की शुरुआत, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो देखा जाए तो सिर्फ एक फील करने की बात होती है कैसे उसके बाद लैंडस्केप चेंज हुआ अभी बोला जा रहा है। लेकिन
आई थिंक एक एरा को बोलना एरा एक बात है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन अलग बात है। और जो सबसे बेस्ट चीज़ ट्रिपल एच और पूरी टीम यहाँ पे कर रही है, निक खान के बारे में भी आई थिंक डेफिनेटली कभी ना कभी तो कोई डॉक्यूमेंट्री आएगी, बिकॉज जितने लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि जितनी बात होती है जितना बताया जाता है उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा निक खान का इन्वॉल्वमेंट है, और उनका इतना पुल है बाकी सुपरस्टार्स को वापस लाना WWE में। CM Punk ने बोला कि निक खान की वजह से मेन बंदा वो है जो मुझे वापस लाना चाहता था, इनफैक्ट तब से जब से वो खुद WWE में नहीं थे, जब CM Punk फॉक्स के लिए काम करते थे तब भी निक खान चाहते थे कि पंक वापस आए। तो ये जो लॉकर रूम का माहौल बनाया है, सुपरस्टार सारे इकट्ठे होके आ रहे हैं, लास्ट टाइम हमने कब ऐसा देखा था कि एक एरा में हम गए या फिर एक नया चैंपियन बना बहुत टाइम बाद और पूरा लॉकर रूम बाहर आके उसको सेलिब्रेट कर रहा है, जेन्युइनली उसके लिए खुश है कि ये बंदा अब चैंपियन बना, क्योंकि हम सारे एक ही पेज में हैं कि WWE आगे बढ़े। अब हम ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे रोहित, लेकिन देर इज़ अनदर कंपनी जहाँ पे लॉकर रूम एक पॉइंट पे बहुत बढ़िया था, और आज सिर्फ लॉकर रूम की पॉलिटिक्स की वजह से उस पूरी कंपनी की बैंड बजी पड़ी है।
ये जो एनवायरनमेंट और फील वाली बात है आयुष, वो टाइम भी याद है जब WWE में बजट कट्स हो रहे थे और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था अब ये रिलीज हो जाएगा, सारा बैकलैश सारी नेगेटिविटी WWE के सोशल मीडिया पे WWE के शोज़ में हर जगह फैली हुई थी। लेकिन अचानक से ट्रिपल एच ने आगे पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन चलाई कि उसने उसके अंदर जो भी डाला भाई बाहर से बिल्कुल क्लीन होकर आ गए, तो WWE की इमेज इसमें बहुत अच्छी लग रही है और माहौल बहुत पॉजिटिव है, फैंस भी एक्साइटेड हैं कि यार अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो कुल मिला के ये तो मैं बोलना चाहूँगा भाई, इतने टाइम से WWE देख रहे हैं, अभी जैसी फ्रेश फीलिंग, अभी जैसा जो सब न्यू फील हो रहा है और आगे क्या होगा वो जानने की एक्साइट जो पहले पता नहीं कहां दब सी और खोसी गई थी वो दोबारा से वापस आ गई। और जब मैं ये एक्साइटमेंट की बात कर रहा हूं कि नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट तो हमको एक चीज पता चली इसी मंडे नाइट रॉ से रॉक और कोडी रोड्स की एक फ्यूड, वो तो अब डेफिनेटली होने वाली है। और जिस तरीके से रॉक ने आके कोडी रोड्स को भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दी इस बार पहली बार, क्योंकि अब वो चैंपियन बन गए हैं, तो ये स्टोरी लाइन के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। और सर मैं पूछूंगा कि क्या लगता है ये मैच कहाँ पे जाके हो रहा है, और रोमन रेंज तो अभी गायब है, तो अगर रोमन रेंज भी इस चीज़ को देख रहे होंगे भाई मैं तो गायब हूँ, ये रॉक तो भाई ये कोडी रोड से जाके बातें बातें कर रहा है, इसको ज़्यादा कोई फर्क असर पड़ा भी नहीं। और एक मैंने रिपोर्ट भी सुनी कि रेसलमेनिया 41 में ये दोनों मैच करेंगे अपना सिंगल्स वाला।
आई डोंट थिंक कि WWE इस चीज़ को इतनी देर तक खींच के रखेगी, और ना तो मैं रॉक वर्सेस कोडी देखना चाहता हूँ रेसलमेनिया 41 में अभी के अकॉर्डिंग। आई डोंट थिंक कि वो इतना बड़ा कोई मैच है, और आई डोंट थिंक कि कैसे हम बोल सकते हैं कि अभी कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 तक चैंपियन रहेंगे, कि कोडी नहीं हार सकते, कि कोडी तो अब हारेंगे ही नहीं। अभी तो भाई 2 दिन हुए हैं चैंपियन बने हुए हैं, मुझे पता है एकदम से तो नहीं हार जाएंगे, लेकिन WWE इस पूरे साल में क्या होगा उसके डिपेंड करेगा, उसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे। रॉयल रंबल कौन जीतेगा, कोडी वर्सेज CM Punk, कोडी वर्सेज ड्रू मैकइंटायर वर्सेज सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज, में भी कुछ भी हो सकता है अगले साल की रेसलमेनिया में। तो रोहित, मैं रेसलमेनिया में हो या समर स्लैम में हो मैच, लेकिन होगा ज़रूर, ये बात तो WWE ने क्लियर कर दी। और आई थिंक कि रॉक एक पॉइंट पे अब ऐसा शो कर रहे हैं कि उनको भी वो WWE चैंपियनशिप दोबारा से अच्छी लगने लगी है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इस टाइटल की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं रॉक के दिमाग में भी ये बात होगी कि टाइटल रोमन पे था, मेरे पास क्यों नहीं था, क्योंकि पहले उनको मैच लड़ना था रोमन रेंज से, तो मे बी रॉक टाइटल के लिए ही वापस आए थे। अंदर से वो चुपचाप बैठे रहे बाद में भाई कि कभी रोमन कोडी को और आएगा तो मैं उस पर टर्न करके उससे मौका मांग लूँगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया गेम, तो अब रॉक को कोडी से टाइटल शॉट लेना पड़ रहा है। रियलिस्टिकली मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि समर स्लैम या फिर उसके अराउंड मिड ईयर में, समर में कहीं ना कहीं WWE इस मैच को करे, ताकि कोडी को ये बड़ी विक्ट्री दी जाए, और उसके बाद आई डोंट नो कि कैसे पहुँचेगा इस तक, लेकिन रोमन वर्सेस रॉक,
क्या पता ये वाला मैच WWE सऊदी अरेबिया में भी ये रॉक और कोडी वाला मैच बुक कर सकती है। और जब ये रॉक की बात हो रही है, तो अभी तक हमने रॉक के केसेस में यही देखा है आयुष कि WWE जिस तरीके से रॉक को दिखा रही है, रॉक अपने आप को जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए है, जो कि ऑब्वियसली रॉक का मेजर रोल यही है कि दोबारा से जो ऑडियंस है जो शायद नहीं देख रहे अभी या फिर नई ऑडियंस लेके आनी है, तो उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। तो मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि रॉक एक पॉइंट पे चैंपियन भी बन सकते हैं, और वही चैंपियनशिप मेजर चैंपियनशिप के साथ, क्योंकि अगर रॉक चैंपियन हो गए WWE के, तो इसका मतलब कि वो जहाँ पे जा रहे हैं उस बेल्ट को लेके जा रहे हैं, और जहाँ पे उस बेल्ट को लेके जा रहे हैं मतलब वहाँ पे वो WWE का नाम कर रहे हैं। और इस बार रॉक को ही करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि उनके खुद के जो स्टेक्स हैं वो WWE के ऊपर लगे हुए हैं। तो इमेजिन 2024 या 2025 रॉक के कंधों पर WWE का वर्ल्ड टाइटल है।
क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर रॉक चैंपियन बन जाते हैं, तो क्या ये नई एरा में घुसने वाली जो बात है फिर ट्रू है या फॉल्स है? बिकॉज रॉक इज़ फ्रॉम एटीट्यूड एरा, और रॉक बहुत पुराने लेजेंड है, अगर पुराने लेजेंड्स को ही वापस बुला के सबसे अपना टाइटल देना है, सबसे ऊपर वाला टाइटल, तो ये नया क्या है इसमें? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोग डेफिनेटली इस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इसका पॉइंट ये है कि ट्रांजिशन कराने के लिए टाइटल की और वैल्यू बढ़ाने के लिए करना है, कर सकते हैं, बट रोहित कोडी रोड्स पर टाइटल डाल के रॉक को टाइटल देंगे फॉर वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो वो आई डोंट थिंक कोई लॉजिक उसमें मुझे नहीं दिखता। ये मैच अगर होता है तो इट शुड बी अ विक्ट्री फॉर कोडी रोड्स, और वहाँ से फिर आगे जो मर्जी हो रॉक का वो फिर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये फ्यूड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगी, कोडी एकदम से ही मान जाएंगे चैलेंज के लिए, वो भी थोड़ा बकवास है कि क्यों भाई रॉक को तुम दोगे एक शॉट, रॉक को कुछ तो करना पड़ेगा। व्हाट इफ़ द रॉक विंस द रॉयल रंबल, आई डोंट नो, क्या पता रॉक किसी और को चैलेंज करें और उस मैच को जीत के फिर वो कोडी तक पहुँचे। लेकिन कुछ भी जो होगा वो रोहित एक बड़े लंबे स्ट्रेच ऑफ टाइम पे होगा, और एक और बड़े लंबे स्ट्रेच ऑफ टाइम पे जो बंदे का आगे की स्टोरी चलने वाली है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। तो इसलिए जितने भी फैंस अभी रो रहे हैं, जितने भी फैंस WWE क्विट कर रहे हैं, आई थिंक उनको क्विट कर देना चाहिए और उनको सोना चाहिए कुछ देर तक, बिकॉज व्हेन ही कम्स बैक वो जागेंगे, और फिर वो ऐसा जागेंगे बिकॉज रोमन रेंज को ऑलरेडी पता है वो क्या करने वाले हैं रोहित। और जब रोमन वापस आएंगे, आई थिंक ट्राइबल चीफ भी हम भूल जाएंगे, बिकॉज उससे बड़ा कुछ होने वाला है।
सबसे बढ़िया बात जो इस समय लग रही है वो है जो मिस्ट्री क्रिएट हुई है आयुष रोमन रेंज के अराउंड, क्योंकि जब से रोमन रेंज वापस आए हैं सिर्फ एक आधी हफ्ता था जो वो चैंपियन नहीं थे, उसके बाद क्योंकि जैसे वो पे बैक में आए तो उन्होंने जाके सिंपली जो है चैंपियनशिप जीत ली थी, यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ट्राइबल चीफ जब भी उसने अपनी एंट्रेंस करी है, हमको आदत है उसको बेल्ट के साथ देखने की, अब वो बिना बेल्ट के, बिना चैंपियनशिप के, बिना टाइटल के होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन लग रही है कि अब ये ट्राइबल चीफ कैसे एक्ट करता है इस चीज के ऊपर कि उसके पास चैंपियनशिप नहीं है, क्या वो स्टिल अपने आप को ट्राइबल चीफ मानता है? जैसे रोमन रेंस ने कहा कि जब तक मेरे पास पॉल हेमन है मैं उसे ट्राइबल चीफ मानूंगा, मैं अपने आप को ट्राइबल चीफ मानूंगा। और अभी उन्होंने पोस्ट भी करी अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जहाँ पर वो कह रहे हैं कि भैया चलो भैया दुख वो रोना धोना सब कुछ कर लिया, अब मेरा डे वन है और दोबारा से वो तैयारियों में लग चुके हैं। और उस तैयारी से आयुष मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा जो एक रूमर या स्पेकुलेशन थी फैंस की कि अब रोमन रेंस का ट्रांजिशन होगा एक बेबी फेस में, नहीं होना चाहिए और स्टूपिड डिसीजन भी होगा भाई ये।
भाई देखो बेबी फेस का मतलब ये नहीं होता बिग डॉग बनाना, आई डोंट थिंक लोग समझ पा रहे हैं। बहुत फाइन लाइन है इस चीज़ के अंदर कि रोमन रेंस कैसे एक्ट करेंगे। रोमन रेंस ने बहुत बारी अपना ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में भी बेबी फेस वाले काम किए हैं और उसका एग्जांपल है सैमी जेन को ब्लड लाइन में लाना, अपने भाइयों के सामने सैमी जेन को चुन के उनको ऑनररी उस बनाना, और भी दो तीन आप इन ऐसी इंस्टेंसेस निकाल सकते हैं जहां पे रोमन रेंज ने कुछ काम किए हैं जो कि एक बेबी फेस करता है, जैसे कि पॉल हेमन को फायर करना। आई थिंक कि ये बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि रोमन, मतलब जब बेबी फेस हम रोमन के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में यही बात आती है कि भाई बिग डॉग ये तो वही बन जाएगा जो पहले फ्रेंच कट वाला रोमन रेंस था। भाई ऐसा नहीं होने वाला, ये बंदा अगर बेबीफेस बनता भी है तो वो एक ऐसी हील पावर के अगेंस्ट जाएगा जहाँ पे वो ट्राइबल चीफ बन के भी लड़ सकता है। रोमन रेंस विल स्टिल वर्क टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली एंड ही विल बी द ट्राइबल चीफ, लेकिन क्या पता इस बार वो अच्छे कॉज के लिए वो काम करे और इवेंचुअली वो वापस हील बन सकता है जब मर्जी उसका मन करे। रोल तो ये रहेगा भाई जो मुझे करना है मैं करूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, बट वो बेबीफेस भी तो हो सकता है ना।
यहाँ से ये बेबी फेस वाली जो हमेशा थ्योरी लगाई जाती है वो बिग डॉग वाली चीज़ को हमेशा दिमाग में रख के लगाई जाती है, लेकिन आयुष हमको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि बिग डॉग से ट्राइबल चीफ बनने तक रोमन रेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि अगर वो सेम एग्जैक्ट बिग डॉग वाला ही कैरेक्टर लेके आ जाते हैं दोबारा लेकिन एक इम्प्रूवड रोमन रेंस के साथ, तो इस बार सिर पर विंस मैकमैन नहीं बैठे, तो बेबी फेस का नाम लेके ही जो एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है वो दिमाग इस बार उतना ख़राब नहीं होगा। और मेरे को अभी इस पॉइंट पर वैसे लगता नहीं है कि रोमन रेंस को कोई फैंस को प्लीज करने वाली किसी भी रोल में आने की ज़रूरत है, उनका वही बैड
आई थिंक अगर इस बार कोई इस टाइम पे रोमन रेंस के पास जाके भी अगर कोई पूछेगा ना तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है, वो बोलेंगे मेरा सबसे बड़ा फियर है वापस बिग डॉग बनना। बिकॉज रोमन रेंस का सबसे मुश्किल पीरियड था वो करियर का, इनफैक्ट वो बोलते हैं कि भाई शील्ड में भी मुझे कभी एक गुड गाय नहीं बनना था, मैं तो वहाँ से ही बैड गाय बनना चाहता था। तो रोमन के ब्लड में है वो बैड गाय वाली चीज़ रखना, और जैसा कि मैंने बोला ज़रूरी नहीं है कि तुम एक बैड गाय हो। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का अगर हम एग्जांपल लें तो हम कब बता सकते थे बंदा हील था, कब बता सकते हैं बंदा फेस था? भाई हर किसी के साथ लड़ रहा है, कुछ भी मन में आया वो कर रहा है, उसका कैरेक्टर ही वैसा था। तो वो एक ऐसा बंदा था जो फेस से फेस भी लड़ सकता है, हील से हील भी लड़ सकता है। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल चीफ को उठा लें तो ऐसा तो नहीं था कि वो किसी हील से नहीं लड़ सकता। अगर हम करंट वाले ड्रू मैकइंटायर को रोमन रेंस ट्राइबल चीफ के सामने भी डाल दें तो क्या कोई ऐसा बोलेगा कि हील से हील क्यों लड़ गया? बिकॉज रोमन रेंस का जो गिमिक है वो आई डोंट थिंक एक हील या फेस मान भी सकते हैं उसको।
ये इंसान के साथ तब होता है जब वो अपने कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्शन से काम कर रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है रोमन रेंस के पूरे कैरेक्टर में। जैसे ब्रॉक लेसनर के केस में भी होता कि जब कोई इतना बढ़िया काम कर रहा है तो भाई फिर उसे किसी के भी साथ मिक्स में डाल सकते हैं और जो आउटपुट है वो अच्छा ही आएगा। और इस बार भी मतलब जो लोग डिसअपॉइंटेड हैं उन्हीं के लिए ये है कि यार रोमन रेंस चैंपियनशिप हार गया, अब क्या होगा भाई, अब तो मज़ा नहीं आएगा। तो इस बात की गारंटी मैं तो कह रहा हूँ हम दोनों ही कर सकते हैं कि अब जो आने वाला है इवन वो बेटर हो सकता है या होगा ट्राइबल चीफ और इस जो ट्राइबल चीफ का पूरा रेंज चला 4 साल का, क्योंकि अब रोमन रेंस का के पास एक टाइटल नहीं है, अब स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। अब रोमन रेंस के पास कोई टाइटल नहीं है, हर कोई बंदा उनके पास चैंपियनशिप के लिए नहीं आ रहा। तो अब जब यही एक मेन मोटो रहता था रोमन रेंस के पास हर किसी के लिए जाने का कि भाई इस बंदे के पास टाइटल है, अब इससे हमको चैंपियनशिप लेनी है, अब तो वो स्टोरी ही नहीं है। तो स्टोरी कितनी चेंज हो गई यहाँ पे। एंड ब्लड लाइन भी आयुष, हम हमेशा ऐसे सोचते थे कि रोमन रेंस तो तब टूटेगी, नहीं रोमन रेंस का रेन तो तब टूटेगा जब ब्लड लाइन टूट जाएगी, लेकिन मामला तो कुछ उल्टा होगा। ब्लड लाइन तो वैसी की वैसी है लेकिन रोमन रेंस के पास टाइटल नहीं है, तो ब्लड लाइन इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे ब्लड लाइन चलेगी, वो भी एक इंटरेस्टिंग है।
कुछ चीजों पर फोकस करना चाहिए जो बोली गई है बिटवीन द लाइंस, हमने रीड करनी चाहिए हमको। रोमन रेंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वो ऑलरेडी अपने 10th मेन इवेंट के देर देख रहे हैं। ये बात ऑलरेडी बोली गई थी कि वो अपनी 3rd इनिंग में है, मे बी हम बोल सकते हैं 5th इनिंग में है, 6th इनिंग में है। बट जो ट्राइबल चीफ की स्टोरी है वो ऐसे ख़त्म नहीं हो जाएगी। जैसे हम यूजुअली देखते हैं कि हम अगर सेथ रॉलिंस का एग्जाम्पल लें कि अभी वो हार गए, जब वापस आएंगे कुछ नया कैरेक्टर लेके आएंगे। आई डोंट थिंक रोमन जब वापस आएंगे कुछ अलग लेके आएंगे, क्योंकि अगर वो कुछ अलग ही लेके आते हैं, अपना बेबी फेस बन के कुछ मूड चेंज करके आ जाते हैं, तो हमें ये बताया जा रहा है कि रोमन रेंस को फ़र्क ही नहीं पड़ा उस चीज़ से कि वो अपना टाइटल रेन ख़त्म हो गया। क्या किसी को ये बिलीव होती है बात जब मैं बोल रहा हूँ कि ये रोमन जो हमने देखा है 4 साल तक, ये वापस आएगा और इसको ये याद ही नहीं है कि मैं अपनी 1300 दिन की टाइटल रेन जो है ख़त्म हो गई है, और एक खुश है, इधर उधर आके जोक्स मार रहा है, हंस रहा है, ये जाके इधर उधर अच्छी बातें कर रहा है, एडम पियर्स को अपना दोस्त बना रहा है।
ये जो स्टोरी लाइन है वो प्रोग्रेस करेगी डेफिनेटली। जो रोमन रेंस अब जो भी कुछ करने वाले हैं उस पर छाप होगी रोमन रेंस के इस रेन की। हो सकता है वो अपनी नई एक स्टोरी शुरू कर दें कि मेरे को दोबारा से उस टाइटल को चेस करना है, जो कि अभी फिलहाल तो ऑब्वियसली हमको पता नहीं होने वाला, क्योंकि अभी कोडी रोड्स चैंपियन है, तो WWE दोबारा से इनको मिक्स में डाल के वो एक ऐसा एंगल नहीं क्रिएट करना चाहेगी जहाँ पर WWE खुद प्रॉब्लम में आ जाए। बट कुल मिला के सवालों से भरी हुई है रोमन रेंस का जो नेक्स्ट रन होने वाला है, और इतनी तो गारंटी है यहाँ पे कि जो भी चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके सामने वो अच्छी दिखाई देंगी आपको, और हम उस स्टोरी लाइन को और इन्जॉय करेंगे। इवन अभी जो बहुत सारे लोगों की डिसअपॉइंटमेंट है वो खुशियों में बदल जाएगी कि चलो रोमन रेंस टाइटल हारे, उसकी वजह से अब रोमन रेंस एक नई चीज़ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट जब पॉल हेमन के साथ मिलकर होगा तो भाई जैसे वो बोलते हैं ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, स्पॉइलर है कि वो चीज़ बढ़िया ही होगी, और वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम आपके साथ असली खड़ा पॉडकास्ट में बात करेंगे।
आई थिंक मैं जाने से पहले एक बोल्ड प्रिडिक्शन मांगना चाहूँगा यार रोहित से, और खुद भी करूँगा, और इसके अराउंड रोहित कुछ भी बोल सकता है, कोई इस पे यहाँ पे स्टिप्यूलेशन नहीं है कि कैसी बोल्ड प्रिडिक्शन होगी इन सुपरस्टार्स के अराउंड ही, लेकिन मेरी बोल्ड प्रिडिक्शन है कि रेसलमेनिया 41 में इट विल बी रॉक वर्सेस रोमन रेंस, करियर वर्सेस करियर मैच।
मैं ये भाई मतलब अच्छा है, लेकिन मेरे को इसमें मेरे को पता क्या प्रॉब्लम लग रही है, मतलब मैं चाह रहा हूँ रॉक और ज़्यादा रेसल करें, और अगर वो रिटायर हो गए तो मुझे क्योंकि ऐसी फील आ रही है कि रॉक अब दोबारा से TKO बोर्ड को ज्वाइन कर चुके हैं, तो शायद उनको और टाइम देना चाहिए, क्योंकि अब बंदे को हॉलीवुड से भी फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि उसके WWE में पैसे लगे हुए हैं, तो वो रिटायरमेंट की तरफ उनको लेके चाहेगा। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन क्या रहेगी अगर मैं देखूं तो, अच्छा मैं वैसे डेफिनेटली ये रॉक, अगर रॉक को अपना करियर एंड करना है तो भाई इससे बढ़िया कोई वे हो ही नहीं सकता कि वो रोमन रेंस के सामने रेसलमेनिया में मैच करे, और यहाँ पे टाइटल होगा या नहीं होगा वो एक अलग क्वेश्चन रहेगा। आई थिंक नहीं होगा क्योंकि रोमन रेंस दोबारा से उस तरफ शायद ना जाए, बट मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन क्या होगी, आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगा कि अच्छा आइडिया है वैसे ये कुल मिला के। ना चाहते हुए भी बोल रहा हूँ,
एक्नॉलेज मी।
बाकी गाइस नेक्स्ट मिलेंगे आपसे पॉडकास्ट में, क्या कहना है आपका वैसे इस करियर वर्सेस करियर वाले मैच में, कि वो दोनों बोले भाई हम ब्लड लाइन के बंदे हैं, हम दोनों ही अपनी जान लगा देंगे, और रेसलमेनिया 41 में एक हो सकता है ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया, अभी आयुष इसको बोला है नेक्स्ट वाली,
इट्स द हेट कौन है लीडर ट्राइबल इस पूरी समोअन डायनेस्टी का, रोमन और द रॉक।
अब यहीं से उठा लो इस चीज को है और इसको एक प्रोमो में बना दो तो रेसलमेनिया 41 का एक प्रोमो भी तैयार हो जाएगा। खैर चलो कोई बात नहीं, पॉडकास्ट पसंद आया हो भाई तो अपना आप बताना आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, कमेंट सेक्शन स्पॉटिफाई में सारे खुले रहते हैं, ये अगर आप ऐसे एपिसोड्स और सुनना चाहते हो तो फॉलो कर लेना। फिर से बोल रहा हूँ, हम मिलेंगे आपसे असली अगर पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।